और हम वापस पहुँचे पहाड़ों की गोद में। अड्डा बना पिथौरागढ़ में ठुलीगढ़। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी मुझे याद नहीं पड़ता कि उधमपुर से हम कैसे पिथौरागढ़ पहुँचे। बहुत धुंधली सी याद है कि हमने लंबी लंबी रेल यात्राएं की, जिसके दौरान ठंड से बचने के लिए माँ ने हमें फौजी कंबल ओढ़ने को दिए। उस पूरी यात्रा में कोई भी सुखद पल होता तो मुझे ज़रूर याद रह जाता, पर चूंकि मेरी स्मृति में कुछ दर्ज ही नहीं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उस यात्रा के दौरान मेरे साथ कुछ भी सुखद नहीं घटा। हमने रेल में बहुत स्वादिष्ट भोजन भी नहीं किया होगा, नहीं तो वही याद रह जाता। सामान्यतः हमें जीवन में घटित होने वाले दुखी और सुखी पल ही ज़्यादा याद रहते हैं। सामान्य समय बहुत धुंधला बनकर हमारी स्मृति से विलीन हो जाता है। मुझे लगता है कि रेल में हमने चॉकलेट या बिस्कुट जैसी भी कोई चीज़ नहीं खाई, क्योंकि मैं इतना भुखड़ था कि एक टॉफ़ी भी अगर मिल गई होती तो यात्रा की स्मृति दिमाग से न जाती। मेरी स्मृति में कुमाऊँ के पहाड़ों के बीच की सड़क यात्रा भी नहीं, हालांकि मैं जानता हूँ कि हमने रोडवेज की बस से ही यात्रा की होगी, क्योंकि उन दिनों हम खुद को इससे बेहतर सुविधा नहीं दे सकते थे। मेरी स्मृति में पहला दृश्य पिथौरागढ़ के केमू स्टेशन से सटे एक दो तीन मंजिला होटल का है, जिसका नाम बहुत सालों तक दिमाग में रहा, पर मैं अब उसे भूल गया हूँ। बड़े भाई से भी पूछा तो उसे याद नहीं रहा। हो सकता है पिथौरागढ़ के किसी पाठक को याद आ जाए। यह होटल ठीक सिनेमा लाइन के मुहाने पर था। कह सकते हैं कि इसी होटल से सिनेमा लाइन शुरू होती थी। बाद में वह होटल तोड़कर कुछ और बनाया गया। उस होटल की लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते हुए मैंने उसकी सीलन भरी दीवारों की गंध महसूस की थी, जो मुझे आज भी याद है। उसकी लकड़ी की बालकनी से मैं स्टेशन की रंग बिरंगी बसों को देख रहा था। तब ज़्यादातर बसें ट्रक जैसी होती थी, यानी उनका इंजन आगे की ओर निकला हुआ रहता था। बसों के रंग थोड़े चटक चमकीले होते थे, पर उतने भी नहीं जितने पाकिस्तान की बसों में दिखते हैं। मैं बहुत कौतूहल से चीज़ों को देखने समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हम कई घंटे रुके और इस दौरान मैं बहुत बेचैन रहा, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ न था। मैं बार बार लकड़ी की बालकनी जैसी जगह पर आकर बाहर का दृश्य देखने लगता। अंततः कई घंटों बाद पिताजी एक ट्रक लेकर आए। इस ट्रक में घर का सामान लादा गया और हम ट्रक ड्राइवर के साथ वाली आगे की सीट पर बैठे। ट्रक स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर ठुलीगाड़ के किनारे जाकर रुका। जैसा कि नाम से ही लगता है, ठुलीगाड़ एक पहाड़ी गाड़ थी, जिसमें बरसातों के दिनों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। यह एक छोटी सी गाड़ थी जो आगे जाकर काली नदी में मिल जाती है, पर छोटी होते हुए भी इसमें लोगों को डुबोने की कुव्वत थी। जल्दी ही मैं बताऊंगा कि कैसे कक्षा 6 में मेरा एक सहपाठी यशुदास मेरे ही सामने गाड़ में डूब कर मरा। औरों के लिए तो आज भी ठुलीगाड़ एक गाड़ का ही नाम है, पर हमारे परिवार के लिए ठुलीगाड़ एक जगह का नाम था, जिसने हमारे परिवार की परवरिश की और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। यही वह जगह थी जहां हम अगले कई सालों तक रहने वाले थे। इस जगह को बनाने वाले जमा 3 घर थे। एक घर बड़ा था और थोड़ी ऊंचाई पर था। दूसरा घर छोटा था और बड़े घर से महज 20-25 मीटर नीचे थोड़ी ढलान पर था। नीचे वाले घर में ऊपर एक कमरा था और उसके नीचे भी एक कमरा। नीचे वाले कमरे के साथ जरा सी जगह और निकाल दी गई थी। पता चला कि पिताजी ने 20 रुपये महीने की कीमत पर नीचे वाला कमरा किराए पर ले लिया था। इस कमरे में कहीं से भी कोई खिड़की न थी, क्योंकि वह ज़मीन खोद कर उसे समतल करके बनाया गया था। उसके दो ओर तो खुदाई से बनी दीवार ही थी। ऊपर वाले घर में हमारे मकान मालिक का परिवार रहता था। उस घर में नीचे 2 कमरे थे और ऊपर एक बड़ी सी जगह थी, जिसे कमरा नहीं कह सकते, क्योंकि चलने के लिए कई बार सिर झुकाना पड़ता था। इन दोनों घरों के चारों ओर क्यारी नुमा खेत थे, जिनमें अलग अलग सब्जियों के पौधे लगे हुए थे। नीचे वाले घर के दरवाजे के पास ही एक आड़ू का पेड़ था, उसके थोड़ा बाईं ओर एक दाड़िम का पेड़ था। ऊपर वाले घर के दरवाजे के पास ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। इस घर के ऊपर एक खेत था, जिसके साथ लगी एक नहर चलती थी। इस नहर के ऊपर MES की कॉलोनी थी। इस जगह यानी ठुलीघाड़ का लोग नीचे मुख्य सड़क से MES कॉलोनी जाने के लिए शॉर्टकट की तरह ही इस्तेमाल करते थे। नहर के साथ साथ पुलम के पेड़ों की पूरी कतार चली जाती थी, जो एक तरह से बाड़ का काम करती थी, क्योंकि इनके तनों का इस्तेमाल करते हुए कंटीली तार बांध दी गई थी। यहाँ अलग से संडास की कोई व्यवस्था नहीं थी, संडास के लिए गाड़ की ओर रवाना होना पड़ता था। जब मैं चौथी में था तो छोटी उम्र का लाभ उठा, घर के आसपास ही बैठ जाता, पर छठी में आने के बाद मैं एक प्राइवेट कार्य हेतु उचित जगह की तलाश करने लगा, क्योंकि जहाँ मैं क्रिया में बैठता था वहाँ से मुख्य सड़क दिखती थी और इसी सड़क से हमारी स्कूल बस गुजरती थी और उस बस में ही वह अर्चना वर्मा बैठी होती थी। शुरू में मैं यह सुनिश्चित करता था कि बस के समय से पहले ही फारिग हुआ हूँ, पर उन दिनों चूँकि आड़ू वगैरह बहुत खा लेता था और जिन लोगों ने कच्चे आड़ू खाए हैं बचपन में वे इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि कैसे इसके बाद पेट जब तब मरोड़ छोड़ता रहता है। मेरे साथ भी यही होता और मैं जब तब गाड़ किनारे भागता। एक दो बार मुझे लगा कि जैसे बस में से अर्चना वर्मा ने दूर से ही सही पर मुझे क्रियारत देख लिया है। अब सोचता हूँ कि कोई देखना भी चाहता बस के अंदर से तो देख नहीं पाता, क्योंकि मैं किसी आड़ में जैसी आड़ लेकर बैठता था उसे हद से हद मेरा सिर दिखता और सिर देखकर कौन भला किसे पहचान सकता है। लेकिन तब मैं बच्चा था और इतना सोच नहीं सकता था। एक दिन जब अचानक बस 5-10 मिनट पहले नमूदार हो गई, जबकि मैं एक्शन में लीन था, बैठे बैठे ही मेरा मुँह शर्म के मारे सुर्ख हो गया। उस दिन मैं स्कूल में दिन भर अर्चना वर्मा के सामने आने से कतराता रहा। 2-4 दिन गुजरने और इस दौरान अर्चना वर्मा के चेहरे पर कोई गैर मामूली भाव ना आते हुए देखने के बाद ही मेरा मन सुनिश्चित हो पाया था कि उसकी नज़र से मेरी छवि सेफ थी। मेरी छवि पर खुली जगह विसर्जन करने वाले गए गुजरे गरीब परिवार से संबंधित होने का बट्टा नहीं लगा था। मुझे लगता था कि वह अब भी मुझे अपने हीरो की तरह देखती है, जैसे उस जमाने की फिल्मों में कोई हीरोइन अपने हीरो को देखती थी, फक्र और गरूर से भरी नज़रों के साथ।